ఓమజ్ఞానతి జ్ఞానాంజనశలాఖ్య చక్షుర్మిళితమైన తస్మై శ్రీగురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభిష్టం స్థాపితమైన భూతలే స్వయం రూప కదామయ్యకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీద్వైత కదాశ్వాసం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరి రామ హరి రామ 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 హరి రామ. పిచ్చి వారంనే జో 12 చాప్టర్ తక్ కంప్లీట్ కియా థా జిస్మే 59 ముఖ్య జో అంగ హై మాతక్ కి చర్చా హుయి థీ ఔర్ జో 5 ముఖ్య అంగ హై జిస్కో చైతన్య మహాప్రభు ने एम्फसाइज किया है स्पेशली कि ये 5 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है. और कई बार देखा जाता है कि ये रिपीटेड लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी कोई भी चीज को अगर जब दोबारा बताया जाता है इसका अर्थ ये होता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. सो दिस आर द 5 चीज ऐसी है, 5 अंग भक्ति के जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उसके ऊपर वी शुड लिव अवर लाइफ ऑन दैट. तो इसमें से एक है रिसाइडिंग इन मथुरा, मथुरा मंडल स्थिति. 2 है श्रीमूर्ति रांगरी सेवन प्रीता, भगवान के विग्रहों की सेवा. और तीसरा है हियरिंग श्रीमद भागवतम, अर्थात भगवान के श्रीमद भागवतम रूपी जो उनका ग्रंथ है, वर्णन है उनकी कथाओं का, उसको सुनना. एंड देन हरि नाम चैंटिंग ऑफ होली नेम, भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना. एंड द 5th वन इज सर्विंग द बॉडी, भक्तों की सेवा करना, अर्थात भक्तों का संग करना, साधु संग. सो लाइक दिस देयर आर वेरियस पांच ऐसे प्रिंसिपल्स है जिसको हमें हमेशा शुड कंटिन्यू ऑलवेज टू फॉलो. ओके, सो यू कैन टेक वन बाय वन. इन शॉर्ट प्रभुपद कहते हैं कि ये इतने शक्तिशाली है ये 5 अंग, 5 में से किसी भी एक अंग को अगर ध्यान से किया जाए तो नवोदित भक्त में भी भक्ति की उच्च अवस्था तक पहुंचाने में की शक्ति होती है, अर्थात भाव भक्ति. जो नया भक्त होता है जिसका भगवान के प्रति अनुराग कम होता है, ऐसे व्यक्ति को भी ये भक्ति की उच्च अवस्था तक या भाव भक्ति की अवस्था तक पहुंचा सकता है. कृष्ण भक्ति का ये 5 अंगों में इतनी शक्ति है. प्रभुपाद जी कहते थे कि ये इस्कॉन संस्था का जो मेन पिलर है ये इसी 5 वस्तु पर निर्भर करते, या ये 5 अंग भक्ति के हमारे पिलर के समान है. हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण, 16 माला जप रोज करना, रोज श्रीमद भागवतम क्लास पढ़ना या सुनना, फिर भगवान के विग्रहों की सेवा करना, फिर भक्तों की सेवा या फिर गुरु पूजा या भक्तों की संगति, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंशन फैसिलिटीज इन मायापुर वृंदावन. भगवान के वृंदावन और मायापुर जैसे धाम में सुविधाओं का निर्माण करना या भक्त का रहना उस स्थानों में, इसमें से कोई भी भावभक्ति तक पहुंचा सकता है. लेकिन जब तक कोई व्यक्ति अपराध से युक्त रहता है तब तक इसमें से कोई भी उसका पूरा असर हमें दिखाता नहीं है. इसलिए जो भक्त इस 5 चीजों का पूरा लाभ उठाना चाहता है वो रैपिड एडवांसमेंट, अर्थात बहुत तेजी से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उन लोग को डिलीजेंटली अवॉइड ऑफेंसेस अर्थात उनको बहुत सावधानी से अपराधों से बचना चाहिए और खासकर तो वैष्णव अपराधों से। सो किस तरह से हर एक का एग्जाम्पल जो हर एक का जो अंग है वो भक्ति में हमारी बढ़ोतरी कराता है। यू कैन टेक वन बाय वन जैसे श्री मूर्ति सेवन में रूप गोस्वामी में डीजी वर्शिप को लेकर के एक बहुत सुंदर जो वर्णन किया वो अपने इस बुक में है। ये मेरे मित्र अगर आपको इस संसार में थोड़ा भी भौतिक सुख अपने मित्र के साथ भोगने की अगर इच्छा हो थोड़ा भी इच्छा है अगर थोड़ा इच्छा है भौतिक सुख भोगने का तब आप केसी घाट के तट पे खड़े हुए सुंदर कृष्ण का जो स्वरूप है उसको कभी देखना मत। उनको गोविंद कहा जाता है और उनकी आंखें बहुत ही आकर्षक है और मुरली वदन है अर्थात मुरली बजा रहे हैं और उनका मुकुट सिर पे मोर मुकुट है और उनका पूरा जो शरीर है वो मानव चंद्रमा की तरह आकाश में चमक रहा हो वैसे उनका पूरा शरीर चमक रहा है। अर्थात वो इस तरह से कहना चाहते हैं कि अगर आप कृष्ण के विग्रह को देखोगे या भगवान के रूप को देखते हो कभी तो आपकी बहुत एक इच्छा करने का अगर कोई प्लान होता है वो भी चौपट हो जाता है। कुब्जा का इच्छा था कि प्लान बहुत एक इच्छा भोगे लेकिन जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ उसका हृदय इतना निर्मल हो गया कि उसके हृदय में छिपी हुई जो काम वासना थी वो भी नष्ट हो गई। अर्थात भगवान के विग्रहों का इतना प्रभाव है कि वो हमारे दर्शन मात्र सारे गंदगी को साफ कर देता है सब बहुत ही आकर्षण को नष्ट कर देता है। वृंदावन में जो गोविंद विग्रह है अर्थात अभी जो जयपुर में है उनको विशेष करके ये उनको स्तुति के रूप में ये श्लोक बताया गया था। इस संसार का जो सुख है वो मान सकते हैं हम इसको इट्स काइंड ऑफ ये लोहा है ये लोहे की समान है और आध्यात्मिक जगत में जो सुख है वो सोने के समान है और लोहे और सोने में कंपैरिजन नहीं होती। आई मीन वो इतना श्रेष्ठ होता है लोहा से सोना कि यू कैन नॉट इवन कंपेयर विद दैट। सो लाइक दिस भगवान के दिव्य धाम भगवान के दिव्य विग्रहों को देखना इटसेल्फ इज सो ऑस्पिशियस। सो देन चैतन्य चरितमृत में इस कृष्ण ने लिखा है कि ये श्लोक फेमस श्लोक है सकल साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन सकल साधना श्रेष्ठ ए पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्म ए पंचर अल्प संग। ये हमने अभी आपको जो बताया था वो कौन से है साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। तो दिस इज द स्पेशल डेटी वर्शिप का अभी हम चित्र के श्लोक चैतन्य चरितमृत में भी आपको प्राप्त होता है आदि लीला में। सो यू कैन गो थ्रू दैट इफ यू वॉन्ट उस नेटवर्क ड्यूशन में भी और श्लोक है स्मेय राम भंगी त्रय परिचितांश साची विस्तृण दृष्टि वंशी न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंदकेन गोविंदाख्याम हरितनुमित कंठे मा प्रक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंग। ये श्लोक जो रूप गोस्वामी ने आपको भी बताया था। सो दिस इज द श्लोक एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट हियरिंग श्रीमद भागवतम तो रूप गोस्वामी ने इसी तरह से कहा है कि जो व्यक्ति भगवान के श्रीमद् भागवतम का स्टडी करता है, a friend foolish for having heard the tenth canto of Srimad Bhagavatam and thereby becoming completely indifferent to the wonderful activities of Dharmas and Kamas. उन्होंने इस तरह से लिखा है कि जो लोग श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंध पढ़ते हैं या सुनते हैं, ऐसे लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसी अद्भुत जो वस्तु है उसको पूरा त्याग कर देते हैं। वो इतना ग्लोरियस है कि चारों पुरुषार्थ उसके सामने तुच्छ हो जाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया। एक सेकंड, श्रीमद भागवत में कहा गया है धर्मोथ प्रोजित कैतवोथ परमो निर्मस्त सराराम स्थान। तो इस सब धर्म जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको कचरा बोला गया है, अर्थात कैतव धर्म, चीटिंग धर्म, चीटिंग रिलीजन। इसको पढ़ने से, इसका इसका बड़ी कॉल पालन करने से मन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन श्रीमद भागवत इसके ऊपर, इसकी शुरुआत ही वहां से होती है, श्रीमद भागवतम की पंचम पुरुषार्थ जो कि भगवान का प्रेम है। सो जो श्रीमद भागवतम उसको नियमित रूप से श्रवण किया जाए तो आपके हृदय में भाव भक्ति बहुत तुरंत प्रकट करवा सकते हैं। यही चीज श्री प्रभुपाद जी ने भी कही थी कि मैं अमेरिका जाता हूं तो मेरे पास केवल आपका नाम है और श्रीमद् भागवतम है, और यही श्रीमद् भागवतम लोगों को प्रकाशित करेगा। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो, यही एक ऐसा क्रांति लाएगा श्रीमद् भागवतम पूरे संसार में, सब सब लोग श्रीमद् भागवतम की ओर देखेंगे और पढ़ेंगे उसको कलयुग में आगे जाकर के। सो लेट इज श्रीमद् भागवतम का इतना महिमा है प्रभुपाद से कि कृष्ण भक्ति की विधि इतनी सरल है, जस्ट बाय हियरिंग, केवल आप श्रीमद् भागवतम सुनते हैं रोज, ओनली हियरिंग रोज, आपको कुछ यू डोंट नो एनीथिंग, आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप विद्वान नहीं हो, आप नॉलेजेबल नहीं हो, या फिर आप स्किलफुल नहीं हो, या आप में कोई गुण नहीं चलेगा, आप केवल श्रीमद् भागवतम रोज सुनते हैं, रोज एवरी डे निरंतर, ऑटोमेटिकली इट्स more than it. This is the only process. Prabhupada said the process is very simple, but the application is difficult. Process इतना सरल है कि केवल सुनने से ही हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन application difficult है। Application difficult इसलिए है क्योंकि हमारे हृदय में रजोगुण तमोगुण का साम्राज्य है, हमारा मन हमेशा रजोगुण और तमोगुण से आकर्षित रहता है, इसलिए भागवत रूपी जो धन होता है वो जब हमें सुनने बैठते तो कभी मैकेनिकली बैठ भी जाते हैं, लेकिन हमारा मन उसमें अटैच नहीं होता है और एक समय के पश्चात हम इंजन गर्म हो जाता है हमारा स्पिरिचुअलिटी का, तो हम वी कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर। सो इसलिए दिस इज बिकॉज ऑफ रजोगुण तमोगुण। सो वी शुड कंटिन्यू टू हियर एवरी डे श्रीमद् भागवतम, दैट इज so important। फिर serving the devotee,
हरे कृष्ण रोहित,
yes,
भागवतम सुनना है तो is that necessary if we go in chapter wise, मतलब हम for starting first canto से ही start करें और we can listen from anywhere?
well भागवतम तो पूरा पवित्र है, आप कहीं से भी सुन सकते हो, no problem, but सजेस्टेड जो रिकमेंडेड प्रोसेस है वो ये है कि श्रीमद् भागवतम को भगवान का स्वरूप माना जाए और श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो एंड सेकेंड कैंटो ये भगवान के दो चरण है और इसलिए इसको सावधानी से ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। ऐसे जब मैं नया नया जुड़ा था कृष्ण भक्ति में तो ऐसा मैंने सुना था कि श्रीमद भागवतम के फर्स्ट सेकंड कैंटो को कम से कम दो बार पढ़ना चाहिए. सो मैंने दो बार पढ़े थे, फर्स्ट कैंटो एंड सेकंड कैंटो, और उसके बाद फिर थर्ड कैंटो एंड देन फोर्थ कैंटो एंड देन सिस्टम वाइज, क्योंकि भगवान के चरण से धीरे 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 भगवान के मुख तक जाया जाता है. तो भगवान इस जो सिस्टम बनाया, जो सिक्वेंस बनाया है श्रीमद भागवतम का, इसका बहुत बड़ा महत्व है. इसलिए अगर हम इसको सिस्टम से पढ़ते हैं, एक दो तीन चार पांच इस तरह से, तो दसम स्कंद पहुंचते पहुंचते हम उस अवस्था तक आ सकते हैं कि हम भगवान की लीलाओं को अप्रिशिएट कर सकते हैं. नहीं तो क्या होता है, जनरली लोग पहले कूद पड़ते हैं भगवान की रास लीला के ऊपर, हालांकि उनको भगवान के प्रति कोई ऐसा आकर्षण नहीं होता या उनकी महिमा को भी नहीं जानते. सो देयरफॉर इट इज बेटर टू गो सिस्टम वाइज. बट भागवत आप कहीं से भी पढ़ते हो, इट गिव्स इफेक्ट, वो आपको हेल्प तो करता है, अवश्य करता है, उसका उसका असर उतना ही रहता है, असर कम नहीं होता है. But it is better for us to understand Bhagavad.
Okay, Prabhu.
Yeah.
Hare Krishna, Prabhu ji.
हाँ बाबू.
ये हम जैसे प्रभु जी ने पूछा कि तो भागवतम पढ़ना और सुनना दोनों में कोई डिफरेंस है, अगर हमने खुद पढ़ाया हमने सुना
कोई अंतर नहीं?
अगर हम पढ़ नहीं रहे या पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हो तो हम उसको खाली सुने तो भी वही लाभ मिलता है.
किसी को बिठा दो वो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, वो बोलते रहेंगे तो वो सेट. क्योंकि प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखे हैं वो तात्पर्य भी सुनना चाहिए हमें, ट्रांसलेशन नहीं, प्रभुपाद के तात्पर्य को भी सुनना चाहिए. इसलिए आजकल कई भक्त हमारे हैं विदेश में जो लोग ऑडियो बुक प्रिफर करते हैं. ऑडियो बुक्स क्या होता है, MP3 फाइल होती है, उसमें प्रभुपाद के अनुवाद और प्रभुपाद के तात्पर्य कोई नरेट करता है, पूरा कोई पढ़ता है और उसको रिकॉर्डिंग होता है, तो वो लोग अपने काम पे जाते हैं तो सुनते हैं पूरा नरेशन. इट इज एज गुड एज दैट, इसमें कोई प्रॉब्लम. सेम.
ओके.
यस. ओके. सो वी शुड रीड श्रीमद् भागवतम और हियर श्रीमद् भागवतम एवरीडे. इसलिए प्रभुपाद से मॉर्निंग प्रोग्राम एंड इवनिंग प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम में भागवतम लेक्चर सुनना, अगर मॉर्निंग प्रोग्राम रेगुलरली अटेंड करते हैं भागवतम लेक्चर, तो इस्कॉन के सभी मंदिरों में सीक्वेंस से चलता है, फर्स्ट कैंटो से लेकर ट्वेल्थ कैंटो तक सारे श्लोकों को रोज एक एक करके पढ़ाया जाता है. और कुछ साल लगते हैं उसके लिए कंप्लीट करने में, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता है तो उसको 10-20 साल तक वो रोज भागवतम क्लास अटेंड करेगा तो उसका भागवतम हो सकता है. बट दैट इज नॉट बैड, बट द बेस्ट थिंग इज दैट हमारा जीवन कितना लंबा है हमें पता नहीं, कभी भी हम अटक सकते हैं, हमारी सांस अटक सकती है. तो कम से कम हम भक्तों को जीवन में इतना बनाना चाहिए लक्ष्य कि मेरा शरीर छूट जाए, उससे पहले प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे हुए जो तीन प्रमुख ग्रंथ है, भगवद गीता, श्रीमद भागवतम और चैतन्य चैतन्यमृत, इन तीन ग्रंथों को तो मैं कम से कम एक बार अवश्य पढ़ना चाहता हूँ मेरा शरीर छूट जाए उसके पहले. शरीर कब छूटेगा ये नहीं पता, लेकिन अगर किसी को अगर एस्ट्रोलॉजी से पता भी है तो भी उसको ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए कि मैं कम से कम भागवतम 12th कैंटो पूरा और चैतन्य चरितामृत और खास करके कृष्ण बुक ऑल्सो, बिकॉज प्रभुपाद की कॉमेंट्री हो कृष्ण बुक में, तो ये कम्प्लीट लाइफ में कम से कम एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए. कम से कम एक बार, कम से कम का अर्थ होता है आप हजार बार पढ़ सकते हो. हमारे एक सन्यासी महाराज है, मैंने सुना है कि उन्होंने प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ इंक्लूडिंग भागवत और चैतन्य चरितामृत 40 बार पढ़े, 40 टाइम्स सारे बुक्स प्रभुपाद जी के कंटिन्यूस ये कर रहे. सो वी शुड ट्राई टू मेक सम गोल एंड टू कंप्लीट श्रीमद भागवतम। भगवद गीता तो बहुत छोटा ग्रंथ है प्रैक्टिकली अगर आप देखो मटेरियल एजुकेशन में, इतनी छोटी टेक्स्ट बुक तो हमारे पांचवे छठे स्टैंडर्ड में हुआ करती थी भगवदगीता जितनी साइज की टेक्स्ट बुक तो। और हमारे आजकल के जो कॉलेज और मास्टर्स करते हैं तो वो लोग की तो टेक्स्ट बुक का अंदाजा भी नहीं है। वेरी स्मॉल बुक भगवदगीता, वी शुड कंटिन्यू स्टडी एंड भागवतम को अच्छे से पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, मिनिमम एक घंटा पढ़े स्टिल हम कुछ सालों के अंदर भागवतम को समाप्त कर सकते हैं, आई मीन पढ़ करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वेल सर्विंग द बॉडी,
एक क्वेश्चन है यार ऑन रीडिंग और हियरिंग श्रीमद् भागवतम, भगवान तो हमें पढ़ना ही चाहिए और उस पर हम कैसे जो श्री प्रभुपाद जी ने शिक्षाएं दी हमें भागवतम में किताब या फिर हम भागवतम का सुन रहे हैं तो उससे हम शिक्षा को भी ग्रहण करें साथ साथ ही वो भागवतम पढ़ें। आई मीन हाउ टू डू दैट टू आल्सो,
हाउ टू
गेट द टीचिंग्स और हाउ टू गेट द प्रैक्टिकल टिप्स ऑन एनीथिंग विच इज गिवन श्रीमद् भागवतम, वो भी कैसे साइड बाय साइड ग्रहण करें। श्रीमद् भागवतम पढ़ना तो अच्छा ही है पर उसके साथ कैसे हम ये जो मूड है श्रील प्रभुपाद जी का या फिर जिस टॉपिक के बजाय सब्जेक्ट मैटर उस पर कैसे हम अपने डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम के टीचिंग्स को।
वेरी सिंपल, बिकॉज श्रीमद् भागवतम प्रैक्टिकल लाइफ को ज्यादा डील करता है। श्रीमद् भागवतम के जो पास्ट टाइम्स जो इंसिडेंट्स जो उसमें कथाएं हैं और प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो आपको मॉडर्न लाइफ का इन एंड आउट बताएगा पूरा क्लियर पिक्चर। इवन आप हमारा अपना भी इन एंड आउट बताता है, मीन्स कई चीजें ऐसी होती है कई बार जैसे मैं कुछ लोग मुझे कहते थे जब मैं बहुत छोटा था शुरू में करीब 20 साल के आसपास या 18 साल के आसपास तब मैं भागवतम पढ़ता था कुछ, तो कुछ लोग मुझे बोले भाई तुम 18-20 साल का बच्चा तुम्हें क्या पता पड़े संसार के प्रैक्टिकल लाइफ के विषय में। तो देन आई यूज टू टेल देम कि अगर 10 साल का मैं तो 20 साल का हूँ, अगर 10 साल का बच्चा भी श्रीमद् भागवतम पढ़ता है प्रपथ के तात्पर्य के साथ तो वो 70 साल के बूढ़े को भी उसके जीवन का सही मार्ग दिखा सकता है। सो द पॉइंट हियर इज कि भागवतम में सब प्रकार का ज्ञान है, सब प्रकार का, इसमें राजनीति का ज्ञान है, इसमें मैथमेटिक्स है, साइंस है, इसके अंदर फैमिली ट्रेडिशन है, वर्णाश्रम है, फिर सब कुछ एवरीथिंग फुल है श्रीमद् भागवतम में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं है। तो इसलिए वी शुड कंटिन्यू टू रीड श्रीमद् भागवतम और एज फार एज अप्लाइंग इन प्रैक्टिकल लाइफ में इसको आसान है स्वीकार करना, क्योंकि प्रभुपाद जी कोई हायर फिलोसॉफी नहीं बताते श्रीमद् भागवतम में, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एंड एज फार एज प्रभुपाद मूड एंड मिशन इज कंसर्न, प्रभुपाद का मूड एंड मिशन विल बी मोर क्लियरली विजिबल इन प्रभुपाद पर्पस इन श्रीमद् भागवतम। तो वो ज्यादा आपको मोटिवेशन देगा प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवतम। सो इसलिए ऑफकोर्स अदर बुक्स आर इम्पोर्टेंट एंड प्रीचिंग रिलेटेड मटेरियल को स्टडी करना ये भी अच्छा है, बट जनरली हर एक भक्त क्या करता है, अगर 4 ग्लास पानी अगर टंकी में डालता है तो उसमें से 2 ग्लास पानी या 1 ग्लास पानी बाहर निकालता है यूज करने के लिए। इन अदर वर्ड्स अगर आप 4 लेक्चर सुनते हो तब आप 1 लेक्चर देते हो लाइक दैट, अर्थात इनपुट होना चाहिए और आउटपुट होना चाहिए। तो आप हमारा आध्यात्मिक इनपुट्स में आप बहुत सारी चीज हो जाए श्रीमद् भागवतम वगैरह और फिर आप लेक्चर देते हो तो वो इफेक्टिव हो जाता है। अगर हम शास्त्र स्टडी नहीं करते तो हम प्रचार में कमजोर हो जाते हैं, हमारा प्रचार केवल दिखावा हो जाता है, आई मीन रोबोटिक्स हो जाता है पूरा प्रचार, उसका इफेक्ट नहीं होता है। और साथ साथ में भागवतम हम जब पढ़ते हैं तो भागवतम को ये सोच के नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं इसके माध्यम से लेक्चर दूंगा, लेक्चर देने के लिए भागवत नहीं पढ़ना चाहिए, भागवत इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं माया से ग्रस्त हूं और ये श्रीमद् भागवतम मेरे हृदय की शुद्धि करेगा, और हृदय की शुद्धि होगी तो प्रचार अपने आप होगा अच्छे से. सो यू शुड कंटिन्यू रीडिंग श्रीमद् भागवतम एवरी डे. So, where we are serving everybody, Bhakto ki sangha seva karna, yeah, sadhu sangha mentioned more preferably, Bhakto ka sangha ya Bhakto ki seva. Seva sabda ka upyog hota hai, Bhakto ko, Bhakto kya chahate hai, seva to, Bhakto ye nahi chahate, tum mere pair dabao, Bhakto chahate hai ki tum apne adhyatmik jeevan mein aage badho. That is what devotee wants. So that is the way you can serve devotee. It's very astonishing that since I have seen this person of Godhead, as Rupa Goswami in description may be dikhaye, ki ye bada aashcharya hai, ki jab se maine Bhagwan ko dekha hai, jo meri aankhon ke aansu se dho gaye hai, there is shivering of my body and he has made me a failure in executing my duties. So, इसमें ऐसा भाव ऐसा वर्णन किया है उन्होंने कि जिस भगवान को दर्शन करके मेरी आंखों में अश्रु धारा बहती है, मेरे शरीर कंपन करने लगता है, मेरा सारा काम करना मुझसे बंद हो जाता है और मैं चंचल हो गया हूँ पूरा. मैं हमेशा उनकी ओर लौटता हूँ. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति इतना पवित्र है या इतना भाग्यशाली है कि उसको शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो जाए, तो उसको तुरंत उनका संग प्राप्त करना चाहिए, उनका उनके मुख से कृष्ण के विषय में सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, और यही एक उपाय है भक्तों की सेवा करने का. कई बार भक्त लोग कहते हैं गुरु को भी कि हम आपकी क्या सेवा करें, हम आपकी क्या सेवा करें. गुरु चाहते हैं कि उन्होंने एक ही लक्ष्य बनाया है अपने लिए गुरु ने, कि उनके जो शिष्य हैं वो अच्छे भक्त बने, शुद्ध भक्त बने और शास्त्र के आधार पर जीवन जिए, और इस प्रकार से गुरु का ये इच्छा स्पष्ट है. तो अगर कोई भक्त चाहता है कि मैं गुरु की सेवा कैसे कर सकता हूँ, तो गुरु के आदेशों का पालन करके, उसी तरह से भक्त होते हैं उनकी संगति करना या उनकी सेवा करना, उसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि वो जो संदेश जो शिक्षा हमें देते हैं उसका हमें पालन करना चाहिए, वही वास्तव में उनकी सेवा है. जैसे भक्तिचार्य महाराज के विषय में अगर आप देखते हो तो भक्तिचार्य महाराज अभी फिजिकली यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ उपदेश दिया है, जो संदेश दिया है, उन्होंने जो शिक्षाएं दी है, वो शिक्षाएं अभी भी हमारे पास है. प्रभुपाद जी हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है वो हमारे सामने है, उनकी वाणी हमारे सामने है. तो उनको चाहे वो वपु में उपस्थित हो या वपु में उपस्थित ना हो, लेकिन उनके द्वारा बताया गया जो संदेश है उस पर ध्यान हमारे केंद्रित करना चाहिए, और वही वास्तव में उनका संग लेना है और वही वास्तव में उनकी सेवा करना है. संग क्या क्या होता है कि आप उनके मुख से सीधा प्रभाव पड़ता है कोई भी संस्था प्राप्त करने से. तो इसलिए जो शुद्ध भक्तों की संगति करता है वो भाव भक्ति की अवस्था, जैसे कि समुत्कंठा अव्यर्थ कालत्वम. समुत्कंठा का अर्थ होता है बहुत तीव्र इच्छा भगवान को सेवा करने की, और अव्यर्थ कालत्वम एक सेकंड भी गलत गवाना नहीं. तो ऐसे जो गुण होते हैं भाव भक्ति के वो उनमें प्रकट हो जाते हैं. केवल दर्शन मात्र से ऐसा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है कि उसके अनेक अनेक जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं केवल दर्शन करने मात्र से. तो आप सोचिए कि उस भक्त की अगर आप सेवा करते हो. एक बार हम एक लेक्चर में बैठे थे तो हम वैष्णव सेवा, मैं और वैष्णव भक्ति वैष्णव महाराज और मैं, हम दोनों साथ में लेक्चर दे रहे थे एक जगह पर. तो हम महाराज बता रहे थे लेक्चर में, हम दोनों एक ही विषय पे बात कर रहे हैं, वैष्णव संघ एसोसिएशन, वैष्णव की सेवा के ऊपर। महाराज वृंदावन में बैठे थे हम लोग, तो महाराज ने कहा कि मुझे वैष्णव की सेवा करना तो भगवान की सेवा करने से बड़ा आसान है। हालांकि महाराज एकदम इसको सिंप्लीफाई बता रहे थे, ही वाज सेइंग कि भगवान की सेवा करने के लिए तो आपको बहुत सारा सब मेहनत करना पड़ता है, शुद्धिकरण ये वो बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, मंत्र उच्चार करना पड़ता है, ये वो बहुत सारा करना पड़ता है। आई मीन इट नीड्स सम एफर्ट्स भगवान की सेवा करने के लिए, यदि भी पत्रम पुष्पम फलम तो एम, लेकिन उसके लिए भी भक्ति चाहिए आपको, देन ओनली विल एक्सेप्ट इट। तो इस तरह से उन्होंने बताया, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा करना बहुत आसान है। भक्त जो होता है इतना संतुष्टि होता है, उसको एक गन्ने का जूस का एक प्याला दे तो इतना खुश हो जाता है, आप पे चार हाथ कर देगा, बोले थैंक यू सो मच। इज सो सिंपल पीपल, डिवोटीज आर वेरी सिंपल एट हार्ट, उनका हृदय बहुत सरल होता है और उनके मुख से केवल कृष्ण का गुणगान ही निकलता है। इसलिए भगवान भक्तों की सेवा करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद, इट्स वेरी सिंपल, आप एक कोई भी एक छोटा बच्चा भी ग्रंथ लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है और वो उसकी क्षमता से एक ग्रंथ भी डिस्ट्रीब्यूट करता है तभी भी इज यू नो प्रभुपाद इज हैप्पी। सो लाइक दिस वैष्णव की सेवा करना बहुत आसान है, बहुत आसान। सो वी शुड सर्व द डिवोटीज, दे डोंट नो बिकॉज दे डोंट वॉन्ट एनीथिंग, उनको एक्चुअली कुछ चाहिए नहीं क्योंकि वो कृष्ण पे निर्भर करते हैं, और उनको किसी चीज की आवश्यकता भी होती है फिर भी वो केवल एक ही व्यक्ति पे भरोसा करते हैं, कृष्ण के ऊपर। सो लाइक दिस इट इज वेरी इजी टू सर्व एंड मैक्सिमम बेनिफिट कैन गेट बाय सर्विंग वैष्णवास। सो दिस इज सर्विंग वैष्णव, देन चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। ओके, सो इट इज सेड दैट सेंट्स हैव बीन एबल टू हियर द वाइब्रेंट स्ट्रिंग्स ऑफ वीणा एट द हैंड्स ऑफ नारद। नारद मुनि के द्वारा भगवान का गुणगान निरंतर किया जाता है और वो वीणा बजाते हैं और जो संत प्रकृति के लोग होते हैं वो सुन सकते हैं नारद मुनि का ये कीर्तन, और वही वाइब्रेशन मेरे कान में प्रवेश किया हुआ है और मैं हमेशा भगवान के उपस्थिति का अनुभव करता हूँ और मेरे सब प्रकार के भौतिक आकर्षण जो है वो नष्ट हो गए हैं। That sloka has been quoted here, singing the glories of Lord Krishna. Bhagwan ki gungan karna accompanied by musical instrument like veena, jaise Narad Muni veena bajate hain, aur wo sab prakar ke hamare bhautik asakti ko nasht kar deta hai. That comes again in bhav, virakti. Ye symptom jo hai detachment ka, bhautik asakti nasht ho jati hai. वो आपको विरक्त दिला देती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नियोफाइट लोग होते हैं वो भी इसको करके सब त्याग देते हैं। प्रभुपाद टॉमकिंस स्क्वायर पार्क और वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क, उस दोनों जगह पर प्रभुपाद जी ये जो कीर्तन किए थे, तो ये जो लोग वहां पर उपस्थित होते थे आप वीडियो में भी देखा है, वो लोग ना ठीक से कपड़े पहनते थे और उनको खाना कैसे वो भी नहीं आता था, यहाँ तक कि नशे में पड़े रहते थे, मांसाहार करते थे, व्यभिचार तो आम बात थी उनके लिए, और जुआ भी खेलते थे। तो इस प्रकार के पियक्कड़ ऐसे पीपी प्रकार के लोग भगवान के कीर्तन में बड़े स्वाभाविक रूप से जुड़े, और प्रभुपाद ने उनको कभी ये नहीं कहा था कि तुम ये सब गंदी आता छोड़ दो। प्रभुपाद तो केवल यही बताते थे कि पॉजिटिव क्या है, कृष्ण क्या है, उसके विषय में प्रभुपाद बता देते, आत्मा शरीर के विषय में प्रभुपाद बता देते। और इस तरह से उनको सामने से वो लोग ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हमें आपका शिष्य बनना हो तो हमारे लिए कोई नियम है क्या? प्रभुपाद ने कहा कि तुम कभी कभी तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करते जाओ तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तो इसका जप करते जाओ। कुछ समय के बाद फिर प्रभुपाद ने कहा कि मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि जब तुम सामने से मुझे पूछोगे कि इसके लिए कोई नियम है कि नहीं, तो इसके लिए नियम है चार। तो ये चार नियम प्रॉपर ने बताए, जैसे ये चार नियम बताए, लोगों ने इसको उसी समय से शुरू कर दिया था स्ट्रिक्टली फॉलो करता। ऐसा एक बार लंदन में हुआ था, प्रभुपाद के कोई गुरु भाई को गए थे बहुत पहले, उन्होंने एक प्रयास किया तो सामने वाला जो व्यक्ति था वो इसके लिए तैयार नहीं था, उसने बोला ये तो असंभव है, ये तो हमको ये तो हो ही नहीं सकता हमसे एडजस्ट। सो जब तक भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन कोई नहीं करता तब तक हृदय में से जो कचरा है अभद्र है वो सब नष्ट नहीं होता है। और इसलिए कोई नया आदमी भी भगवान के नाम का कीर्तन सुनता है तो आजकल ऐसा आप देखते हो कलयुग में जैसे जैसे समय आगे जाता है तो लोगों कीर्तन के प्रति ज्यादा आकर्षण होता जाता है। कीर्तन इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज कई बार हम देखते हैं कि भक्तों का रुचि कम होता है, अगर आप लेक्चर बोलोगे तो तुरंत तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उनकी कीर्तन की बात आती है तो इट इज यू नो फिलर्स फिलर्स के रूप में एक्सेप्ट कई बार हम समझते हैं कीर्तन इज अ फिलर। अगर लेक्चर के पहले 10 मिनट का टाइम होता है उसको फिल करने के लिए, लेक्चर के बाद 5 मिनट का टाइम होता है प्रसाद के पहले, तो कीर्तन इज नॉट अ फिलर, कीर्तन इज द मेन एक्टिविटी, युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए निरंतर कीर्तन हमें करना चाहिए और ये कलयुग की जो इफेक्ट है उसको कमजोर बनाने में या उसको नष्ट करने में ये कीर्तन ही बहुत इम्पोर्टेंट जो तरीका है। सो वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर हरिनाम संकीर्तन। इसलिए प्रभुपाद ऑलवेज यूज टू से स्ट्रीट कीर्तन करना चाहिए, सड़कों पे जाकर के कीर्तन करना चाहिए। सो इससे बहुत लाभ होता है। सो वी कैन गो फर्दर।
हरे कृष्ण जी, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मतलब चैंटिंग द होली नेम में सुखदेव गोस्वामी द्वारा एक वर्ड का इस्तेमाल किया है निर्नीतम, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इट मींस बाय दैट?
ओके, लेट मी चेक, व्हाट इज दैट वर्ड?
निर्नीतम,
निर्मितम,
हाँ निर्नीतम, which means it has already been decided. So what exactly does it mean by that?
I need to read the entire line in that. Okay, is it yahan par mention kiya book mein?
Nectar of devotion mein jo chanting the holy name wala jo hai wo first paragraph mein usme specify kiya. Are you able to hear me Prabhu?
I can hear you. इसको बुक ओपन किया जा सकता है इधर?
Shall I read in that case?
Yeah, sure. You can read. But I think we have books online.
Okay. Shukdev Goswami tells Maharaj Parikshit, उसके अंदर ये आता है कि my dear king, if one is spontaneously attached to the chanting of holy, chanting of the Hare Krishna Mahamantra, it is to be understood that he has attained the highest perfectional stage. It is specifically mentioned that the karmis who are aspiring after the fruitive results of their activities, the salvation who are aspiring to become one with the Supreme Person, and the yogis who are aspiring after mystic perfection can achieve the results of all perfectional stages simply by chanting Mahamantra. Ab ye bolte hain, Sukhdev uses the word nirnitam, which means it has already been decided. He was a liberated soul and therefore could not accept anything which was not conclusive. So, ये इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रही
हूँ। ये है कि ये जो वो liberated मुक्तात्मा थे सुखदेव गोस्वामी, और ये जो conclusive जो statement है जिसके अभी अभी हमने यहाँ पर चर्चा किया जो हमने पढ़ा प्रभुपाद के ग्रंथ में से, सो दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, मीन्स वो इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से ही वाज कंप्लीटली कन्विंस्ड विद दैट, कन्विंस्ड तावत कर्मण कोई न निर्विद्ये तो यावत आया मत कथा श्रवणाद वा या। सो इट इज नॉट दैट ही नीड टू लर्न इट. Yes, now I got it. He already knew this thing. निर्णितम, निर्णितम का अर्थ होता है इट इज डिसाइडेड अथवा निर्णित, इसका निर्णय लिया जा चुका है, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। निर्णितम क्या निर्णित है, दैट वन हु हैज कम टू द स्टेज ऑफ चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र विच डिटर्मिनेशन स्टडीज मस्ट बी कंसिडर एज हैविंग ऑलरेडी पास्ड द ट्रायल्स ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज मेंटल स्पेकुलेशन एंड मिस्टिक ओवर। दिस इज निर्णितम, निर्णितम इज ऑलरेडी डिसाइडेड। सुखदेव गोस्वामी को कुछ इन्वेंशन नहीं करने का था, ही जस्ट इंसिस्टेड ऑन दैट।
ओके,
ही वाज अ लिबरेटेड पर्सन, नो सुखदेव गोस्वामी वो लिबरेटेड थे, तो इसलिए उनको सारा डिटेल लिख करके नहीं, वो मुक्तात्मा थे तो सीधा सीधा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज दिस, ही वाज ही हैड नो टाइम टू गो थ्रू एंटायर फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड मेंटल स्पेकुलेशन। He wants that, what is the essence? Siddhartha, what essence can, the essence is stated here. Like this. That is what Prabhupada has very clearly mentioned. Could not accept anything which was not conclusive. Woh kuch accept nahi karte jo, iska mool uddeshya kya hai, siddha usi ko pakadte hai Sukadeva Goswami. That is the Niranitam.
Thank you, Prabhu.
Yeah.
हरे कृष्ण प्रभु, जो चार नियम है वो प्रभुपाद जी ने बनाए या उन गुरु परंपरा से चलते हुए आ रहे?
ये चार नियम जो है वो शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। ये चारों नियम का पालन करना चाहिए, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, और गुरु परंपरा से भी चल रहा है। This is the not Prabhupada ने कुछ नया invention नहीं किया है, rather Prabhupada ने इसको minimize किया है। हमारे आगे के परंपरा में हमें पहले बहुत सारे नियम कठोर नियम हुआ करते थे, लेकिन Prabhupada जी ने कलयुग की प्रजा को देख करके केवल ये चार नियम को तपस्या के रूप में घोषित किया है। Only four things means this is the minimum, अगर इतना भी नहीं हो सकता है then we are not eligible as मनुष्य के रूप में eligible नहीं है। So these are Guru Parampara ke roop. It's coming from Guru Parampara, of course from Krishna, because Shastra Bhagavan ke dwara bana hua hai. So Shastra ke dwara aata hai.
Okay, Prabhupada.
So, more questions?
Hare Krishna. Prabhu, aapne jaise hum jaise ye panch ang hai to मतलब मैं क्वेश्चन ये कि मतलब जैसे ये जो धाम निवास है उसके अलावा के जो चार अंग है उसको हम प्रयास करते हैं, मतलब मैं प्रयास करता हूँ कि रोज प्रैक्टिस करने का, ऑल्दो मतलब बहुत अपूर्ण तरीके से हम मतलब मैं प्रयास कर पाता हूँ, मगर धाम निवास है इट लुक्स लिटल डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस पर से, मतलब एवरीडे, तो उसको कैसे हमें देखना चाहिए या हाउ शुड बी मतलब जैसे जब जैसे कार्तिक महीना है या अधिक महीना है वहां पे धाम उस समय पे धाम निवास की बात कर रहे हैं या कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में, या मतलब हाउ टू टेक दिस?
यस, वृंदावन मथुरा जगन्नाथपुरी मायापुर द्वारका ये सब ऐसे धाम है जिस धाम में रहने से आपका आध्यात्मिक जो अट्रैक्शन है या भक्ति के जो अंग का पालन है ये ऑटोमेटिकली हो जाता है आसानी से, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे आप वृंदावन जाते हो तो आपको पता है कि आपका चैंटिंग अच्छे से होता है वहां, ऑटोमेटिकली आप कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। सो प्रॉपर ने ऐसा भी कहा है कि जहां पर इस्कॉन है वही वृंदावन है, और जहां पर वैष्णव या संत होते हैं वो स्थान अपने आप वृंदावन बन जाता है। जैसे किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा था भक्ति चारू महाराज को लेकर के, भक्ति चारू महाराज जितने इतने वरिष्ठ सन्यासी प्रभुपाद के शिष्य इतने ऊंचे अवस्था पर भक्ति में, उनको तो शरीर त्याग करना चाहिए वृंदावन में या मायापुर में या कहीं ऐसे स्थान में जाकर के, तो बट प्रभुपाद इसके विषय में ऐसा कहते हैं और हमारी परंपरा के जो अन्य सब वरिष्ठ आचार्य गुरुजन जो है वो ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर ऐसे संत होते वो धाम जगह अपने आप वृंदावन मिल जाती है, चाहे वो अस्पताल में हो फिर भी वो वृंदावन मिल जाते हैं। सो इट इज बिकॉज दैट धाम जो होता है वो शरीर से नहीं रहा जाता, धाम में चेतना से रहा जाता है धाम के अंदर। अगर आप यहाँ पर हो लेकिन आप निरंतर धाम का चिंतन करते हो या कृष्ण का चिंतन करते हो तो आप धाम में रहने के बराबर है। लेकिन अगर आप धाम में रहते हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धाम में ही रहते हैं लेकिन उनका मन जो होता है वो हमेशा भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित रहता है, तो वो धाम में रहते हुए भी धाम में नहीं रहते हैं। तो रिसाइडिंग इन मथुरा इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज मोर ऑन आवर कॉन्शियसनेस। सो रिसाइडिंग मथुरा अभी नेक्स्ट वही हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। वृंदावन धाम की सुंदरता का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि वृंदावन धाम यमुना से डेकोरेटेड है, विभूषित है, कदम्ब वृक्ष और मधुर कलरों पक्षियों का वहां पर निरंतर चलता है और वहां पर श्याम सुंदर भगवान विराजमान है जिनका सुंदर स्वरूप देख करके स्वाभाविक आकर्षण होता है। केवल इन सब चीज का स्मरण करने मात्र से भाव प्रकट हो जाता है। जैसा भी हमने आपके सामने वर्णन किया तो स्वाभाविक रूप से आपके हृदय में भाव प्रकट हो सकता है जस्ट बाय हियरिंग यमुना, जस्ट थिंकिंग यमुना कदम वृक्ष पिकॉक पैरट हिरने गाय गोवर्धन, ऑटोमेटिकली योर माइंड गोज देयर एंड भाव प्रकट। I remember the Lord standing on the bank of Yamuna River, so beautiful among the kadam trees. Yamuna ke tat par Bhagwan jab khade hote hain kadam vrukshon ke madhye mein, wahan par bahut sare pakshi karo kar rahe hain, awaaz kar rahe hain, madhur awaaz ho rahi hai aur anek prakar ke pushpa anek prakar ke bhavre ud rahe hain aur ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही सुंदर और आनंद देने वाला रियलाइजेशन है। तो जनरली सबको धाम में रहना किसको अच्छा नहीं लगता, एवरीवन लाइक्स धाम, बट धाम इज अगेन इज कॉन्शियसनेस। ये तो केवल वर्णन है बट आप सोचिए कि आप जो सेवा करते हो आपको ऐसे स्थान में रहने का सुविधा मिल सकता है ये वृंदावन जैसे धाम में, एंड always you can see Krishna holding flutes, but we need to change our consciousness. So ये स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो सकती है इस जीव गोस्वामी के आधार पर, इसके अनुरूप स्वामी ने कहा है जो भाव भक्ति की अवस्था में प्राप्त होता है। अर्थात कोई भक्त होता है उसका स्वरूप सिद्धि है कि वो वृंदावन का कोई पैरट है, हो सकता है कि वो कोई वृंदावन का बंदर है, हो सकता है कि वो वृंदावन का कोई हिरण है। जैसे कक्कड़ी आपने सुना होगा शायद, कक्कड़ी वृंदावन के कृष्ण के वो राधारानी का बंदर का नाम है शायद कक्कड़ी। वो बहुत अच्छा बंदर है, उसको आप उसको जो भी बोलो, जाओ कृष्ण का मुकुट चोरी करके लेके आ जाओ या फिर कुछ भी कृष्ण का दरवाजे के बाहर ताला लगा दो, कुछ भी कर सकता है, यू कैन डू एनी नॉनसेंस, but it is in a favorable mood, in a serving mood. So this is a bhav bhakti ki sthiti mein sab cheez realize ho sakti hai. Keval vrindavan ka chintan karne matra se, keval vrindavan ka smaran karne matra se ye naye bhakt mein bhi bhav bhakti ka janma ho sakta hai. So Prabhupada says such transcendental feelings are aroused immediately and without fail after my arrival in Mr. Vrindavan. ये ऐसे दिव्य जो अनुभव है वृंदावन के, वो आप नए भक्त है फिर भी आपको इसका अनुभव होगा वृंदावन में रहने का। अभी हमारे पास समय इतना नहीं है, नहीं तो आप सबसे सुनने में बड़ा मजा आता कि आप जब वृंदावन गए थे पहली बार या दूसरी बार तो आपको कैसा लगा था। इट्स वेरी वेरी एनलाइटनिंग, बहुत आनंद आता है वृंदावन का महिमा सुन करके। So, well, any question in this? ओके सो रूप गोस्वामी कहते हैं ये कोई ओवर एस्टिमेशन नहीं किया गया है यहाँ पर. अगर ये सारे पांच अंग को अपराध से मुक्त होकर के किए जाए तो ये आपकी भक्ति में सीधा भाव भक्ति की अवस्था तक आपको पहुंचा सकता है. तो इसलिए ये 64 अंग है वो धीरे धीरे आपको भाव भक्ति की अवस्था तक पहुंचा देता है और फिर अंत में ये बताया गया है कि और भी तरीके हैं वर्णाश्रम ज्ञान का संवर्धन या फिर त्याग वैराग्य. तो ये सारे 64 अंगों में कहीं पर इसका वर्णन नहीं आता है तो क्या वो भक्ति के अंग नहीं आते हैं और साधन भक्ति के साथ उन लोग का कोई संबंध है या नहीं है तो उसका चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में आता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्णाश्रम को लेकर के कुछ वर्णन है कि वर्णाश्रम को रूप गोस्वामी ने भक्ति के अंग में उसका स्थान उसमें नहीं दिया है लेकिन जो लोग शुद्ध भक्ति से पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं हुए हैं वो वर्णाश्रम धर्म का साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को नष्ट करने के लिए लेकिन वो भक्ति को जन्म नहीं दे सकते. जैसे मैरिज विवाह जीवन ये 64 भक्ति के 64 अंग में से नहीं आता है लेकिन फिर भी भक्त गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है ताकि वो शुद्ध जीवन जी सके और अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके. तो इस प्रकार के कुछ वर्णाश्रम विधियां है वो सब्सिडरी बनाया जा सकता है भक्ति के विकास के लिए भक्ति के प्रगति के लिए बट वो 64 अंगों में उन सबका स्थान नहीं आता है. इसलिए श्रीमद् भागवतम का श्लोक है तावत कर्माणि कुर्विता न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते. इसमें कहा गया है कि जब तक किसी का मन भौतिक सुखों से संतुष्ट नहीं हुआ है और जब तक उसको श्रवणम कीर्तन के प्रति स्वाद जागरूक नहीं हुआ है तो उसको फिर वर्णाश्रम के नीति नियमों का पालन अवश्य करना पड़ता है. उसको जो भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है देन ओनली ही कैन बी सिचुएटेड प्रॉपरली इन द सोसाइटी अदरवाइज दे विल क्रिएट अ कैओटिक सिचुएशन इन द मटेरियल वर्ल्ड. सो दिस वॉज चैप्टर 13. Now we can briefly discuss, we can start, let us see how much we can continue. Chapter 14.
Hare Krishna Prabhuji, it was chapter 13 which you did, chapter 12 which you did.
Is it true? No, it was chapter 13 I think.
No, Prabhuji. क्योंकि आपने जितना भी विवरण किया जो भी मैंने भी पूछा था वो भी चैप्टर 12 में ही था क्योंकि चैप्टर 13 फाइव पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस है
तो ये पांच अंग हमने चर्चा किया ना.
हाँ लेकिन ऐसे मतलब अलग अलग नाम से तो चैप्टर 12 में भी लिखा हुआ ही है.
या चैप्टर 12 में समरी है.
अच्छा
चैप्टर 13 में इसको एलाबोरेट किया गया है.
ओके और ये जो अभी आपने लास्ट में जो बताया अभी जो शुद्ध भक्त के लिए वर्णाश्रम लागू नहीं है आपने शायद प्रीवियस पहले भी लेक्चर में शायद बताया था कोई क्वेरी रिलेटेड की वर्ण और आश्रम जो है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवोशनल लाइफ और प्योर डिवोटीज इट इज फॉर मटेरियल लाइफ उनके लिए वो एप्लीकेबल होता है शायद इसके वजह से इनको 64 अंग में नहीं गिना ऐसा है क्या.
भक्ति जो होती है वो केवल जैसे स्पिरिचुअलिटी होती है जैसे चेतना है फॉर एग्जांपल तो लाइफ कम फ्रॉम लाइफ ओनली इट कैन नॉट कम फ्रॉम मैटर. इन द सेम वे डिवोशनल सर्विस कैन कम ओनली फ्रॉम डिवोशनल सर्विस इट कैन नॉट कम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस. लाइक वर्णाश्रम धर्म ये मटेरियल एस्पेक्ट पर आता है केवल वैदिक विधान है समाज को सुरक्षित ढांचा देने के लिए, प्रॉपरली ढांचा देने के लिए उसको सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पर, लेकिन वो भक्ति के लिए केवल एक स्टेप हो सकता है आगे बढ़ने के लिए, वो भक्ति को जन्म नहीं दे सकता है। फिर भी शास्त्र ऐसा कहते हैं जब तक किसी व्यक्ति का आकर्षण भगवान के नाम के प्रति नहीं होता, श्रवण कीर्तन के प्रति नहीं होता, तो उसको प्री मेच्योरली वर्णाश्रम का त्याग नहीं कर देना चाहिए, चाहे वो भक्त है, भक्त भी क्यों ना हो। इसलिए जब तक उसका भक्ति स्ट्रॉन्ग या स्टेडी या प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करता, तब तक उसको वर्णाश्रम का पालन अवश्य करना चाहिए। और कुछ नियम वर्णाश्रम के हैं, जैसे विवाह संस्कार, संन्यास दीक्षा, ये सब समाज को सुरक्षित रखने के लिए और समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये सब व्यवस्थित इसका पालन करना जरूरी है। नहीं तो कोई लोग कह सकता है कि ये वैष्णव लोग तो नहीं करते वर्णाश्रम का पालन, तो हम लोग क्यों करें। तो इसलिए समटाइम इवन एडवांस लोग भी, एडवांस डिवोटी भी वर्णाश्रम के नीति नियमों का पालन कभी कभी करने में दिखने में आता है, बट दे आर नॉट बाउंड। अगर वो उनसे वो तोड़ देते हैं तो इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे सन्यासी जो है वो समुन्द्र पार नहीं जा सकता है, वो वर्णाश्रम के नियम के अनुसार है। लेकिन देव वर्णाश्रम जो स्पिरिचुअल वर्णाश्रम में क्या है कि दे डोंट सी ऑल दिस एस्पेक्ट जो साधारण वर्णाश्रम के होते हैं। प्रभुपाद जी ने हायर पर्पस के लिए समुन्द्र को पार करके लांग करके अमेरिका गए थे। सो इन दिस वे रूल्स जो होते हैं वर्णाश्रम, जो वर्णाश्रम के रिलेटेड, वो उसके लिए भक्त बंधा हुआ नहीं होता है। जो हायर अंडरस्टैंडिंग वाला डिवोटी वो या एडवांस डिवोटी वो, बट मेरे जैसा कोई नया भक्त होता है तो उसको फिर वर्णाश्रम को फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। नहीं तो क्या होगा कि ना घर का भी रहेंगे ना घाट का रहेगा, वो ऐसे बीच में लटक जाएगा। बट दिस इज नॉट मिनिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ डिवोशनल सर्विस और इट इज नॉट मैक्सिमाइजिंग द ग्लोरीज ऑफ वर्णाश्रम। वर्णाश्रम इज जस्ट एक साधन है जो आपको भक्ति में आपकी सहायता कर सकता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
ओके
या सो यस सो 13 चैप्टर के अंत में अलग अलग प्रकार की जो विधियां है उसका वर्णन रूप गोस्वामी किया था, और शुद्ध भक्ति के अंगों में उसका स्थान नहीं है ऐसा भी बताया है। तो खास करके ज्ञान वैराग्य और संत के जो गुण होते हैं, ये तीन चीज का वर्णन विशेष करके आता है। थ्री थिंग्स मेनली, ज्ञान वैराग्य, दूसरा सर्विस एग्जीक्यूटिव टू वेल्थ एंड फॉलोअर्स, अर्थात अपने धन से या अनुयायियों के द्वारा की गई सेवा, और सेंटली क्वालिटीज, संत प्रकृति के गुण। दिस आर गोइंग टू बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कमिंग चैप्टर्स। सो यहाँ पर बताया गया है ज्ञान और वैराग्य को लेकर के खास करके। तो ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का विकास करना, और वैराग्य का अर्थ होता है इंद्रियों के विषयों से डिटैचमेंट, अर्थात उससे अनासक्ति। तो नए भक्त को ये सहायता कर सकता है कृष्ण में अपने आप को स्थिर करने के लिए, जिसको उसके इंद्रियों के विषय में उसका जो आकर्षण होता है वो नष्ट हो सकता है। लेकिन वो डायरेक्टली उसका उद्देश्य कृष्ण के प्रति मन को स्थिर करना नहीं है ज्ञान और वैराग्य का, जैसे हमने पहले चर्चा किया, उसका उद्देश्य ये नहीं है। वो ज्ञान में विशेष करके पदार्थ और आत्मा का फिलोसॉफिकल डिस्क्रिमिनेशन में ही पूरा समय उसमें मग्न रहता है। वो उसमें कृष्ण पर मन को स्थिर करना ये तो केवल साधन भक्ति का भाग है, इसमें ज्ञान में ये नहीं होता है। एक्चुअली ज्ञान और वैराग्य दोनों ही कृष्ण को केंद्रित नहीं करते अपने गोल के रूप में, अपने लक्ष्य के रूप में, इसलिए उसको साधन भक्ति के लिस्ट में मेंशन नहीं किया जाता है। और रूप गोस्वामी चेतावनी भी देते हैं कि ज्ञान और वैराग्य का पालन करने वाले का हृदय जो धीरे 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 सब प्रकार की भावनाओं से शून्य हो जाता है। जैसे फीलिंग्स होती है हमारे हृदय में, मनुष्य का हृदय जो है आत्मा का जो स्वभाव है वो फीलिंग, उसमें दया की भावना, उसमें अलग अलग प्रकार के जो प्रेम संबंधित जो मृदुता, जो सॉफ्टनेस होती है, यू नो फ्रेंड्स, ये प्रेम का आदान प्रदान करने की इच्छा, तो ये जो सौम्यता है हृदय की, ये सब नष्ट हो जाती है ज्ञान वैराग्य से, क्योंकि वो जड़ पदार्थ और आत्मा में इतना डिस्टर्ब हो जाता है, जो सोचता है कि सब कुछ माया है, तो हृदय उसका पत्थर की तरह कठोर बन जाता है। भौतिक रूप से आकर्षित जो भौतिकवादी मनुष्य होता है, उसका हृदय भी पत्थर ऐसा तो नहीं होता, उसमें भी भावनाएं होती है, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति की ओर मुड़ी हुई होती है, उसका हृदय केवल इंद्रिय तृप्ति की ओर है। वैराग्य क्या करता है, उसको विषयों से तो हटा देता है लेकिन उसको कृष्ण तक नहीं ले जाता है, इसलिए ये एक समस्या हो सकती है, ये हार्ड बना देता है हमारे हृदय को। और भक्ति जो है वो भगवान को प्रेम के द्वारा की गई सेवा का नाम भक्ति है, और इस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए हृदय को सॉफ्ट होना बहुत आवश्यक है। ये पूरी जो प्रोसेस है ना हमारी कृष्ण भक्ति की, ये हमारे पाषाण रूपी हृदय जो पत्थर जैसे हृदय को सॉफ्ट मुलायम बनाने के लिए है। जैसे कोई खेती करता है किसान, तो उसका जो भूमि होता है अगर वो बहुत कठोर होता है तो उसमें कुछ उगेगा नहीं, तो उस भूमि को नरम बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए उसपे उसको जोतना पड़ता है, जैसे हल से उसको जोता जाता है तो भूमि जो होती है एकदम सॉफ्ट हो जाती है। उसमें फिर अगर आप कुछ भक्ति लता बीज डालते हैं और उसमें फिर पानी डालते हैं तो उसमें कुछ उगेगा, लेकिन हमारा मेरा जो हृदय है वो हृदय पत्थर की भांति कठोर है, इसमें कितना भी श्रवण कीर्तन करो, उसको पानी डालो, इसमें से भक्ति लता कभी उग नहीं सकता, ये दिस इज अवर प्रॉब्लम। इसलिए ये जो भक्ति में जो तपस्या हमें करनी पड़ती है, ये सारी तपस्या वास्तव में तपस्या नहीं है, ये वास्तव में उस भूमि को हल से जोता जाता है फिर वो सॉफ्ट हो जाता है हमारी भूमि। इसलिए जो थोड़ा बहुत कष्ट हमें भुगतना पड़ता है भगवान की सेवा या साधन भक्ति को करने के लिए, सो दैट मेक्स अवर हार्ट सॉफ्टर, और इस तरह से हमारी भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। सो भगवान ऐसा सॉफ्ट हार्ट होना चाहिए भक्त का, तो स्वाभाविक रूप से नाम रूप गुण और भगवान की जो लीला है उसे स्वाभाविक उसको हृदय को स्पर्श कर पाएगा, उस लीलाओं को भगवान के लीलाओं को आपके हृदय तक पहुंचने का जो मार्ग है वो साफ हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के रूप में कहीं भक्ति में फेवरेबल नहीं माने जाते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन एक बात मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, जैसे कि एक तरफ बोला जाता है कि जो भी प्योर डिवोटी होता है वो विचलित नहीं होता है, मतलब हार्ड टाइम्स हो या इन एवरी सिचुएशन ही हैज टू रिमेन स्टेडी, और दूसरी ओर उसका हृदय कोमल भी रहना चाहिए, मतलब सॉफ्ट भी रहना चाहिए, लाइक हाउ आर बोथ दिस थिंग्स पॉसिबल? कि भगवत गीता के श्लोक के अनुसार भी शीतोष्ण सुख दुख कदा जो भी हम कंपेयर करते हैं, सो हाउ इज इट पॉसिबल कि दोनों तरफ कैसे हो सकता है?
वही मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट थिंग है कि वो किसी भी सिचुएशन को बहुत इजीली टॉलरेट कर सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसका हार्ट सॉफ्ट हो जाता है, अदरवाइज यू कैनॉट टॉलरेट। व्हाई? क्योंकि मटेरियली कोई टॉयलेट करेगा तो वो लंबा समय खींच नहीं सकता है, लेकिन अगर उसके पास स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है जो तभी संभव होती है जब हृदय सॉफ्ट हो जाता है, तभी उसके हृदय में इस प्रकार की भावना आ सकती है। उस समय फिर वो कितना भी टॉयलेट करता है उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसके पास कृष्ण शक्ति है, देयर इज अ स्पेशल फैसिलिटी गिवन टू डिवोटीज, ऑर्डिनरी त्यागी और वैरागी को ये नहीं मिलता है, ओनली भक्तों को ये सुविधा प्राप्त होती है कि दे कैन टॉलरेट एनीथिंग, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंस टोटली, तत्यल कंपा, क्योंकि वो हर एक चीज को भगवान की कृपा समझते हैं, एंड देयर हार्ट्स आर सो सॉफ्ट दैट चाहे कितना भी कठोर समय आता है फिर भी वो कृष्ण के चरण को कभी छोड़ नहीं सकते. दे आर ऑलवेज इंक्लाइंड फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड बिकॉज ऑफ देयर फीलिंग्स फॉर द लॉर्ड द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड लव फॉर द लॉर्ड अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल.
Okay.
Yeah. So, तो ये वैराग्य है वो हमारे हृदय को कठोर बना देता है और भक्ति के लिए वो संभव नहीं बनता फिर वो स्थान. फिर भी कभी कभी वो थोड़ा असिस्टिंग हो सकता है भगवान की सेवा करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल शुद्ध भक्ति के लिए जो अन्य अभिलाषिता है उससे मुक्त करने में कभी कभी वैराग्य सहायता करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको भौतिक सुख भोगने का कोई आकर्षण नहीं है समझ लो पहले से रिनाउंस माइंड है आपका, आपको ना धन में आकर्षण है ना स्त्री में आकर्षण है ना कोई भौतिक कुछ खाने में आकर्षण है, ऐसा कोई स्पेशल स्पेसिफिक कोई आकर्षण नहीं है आपका, स्वाभाविक रूप से आपकी इच्छा भौतिक रूप से वैरागी है. जैसे महाप्रभु के सारे भक्त चैतन्य महाचैतन्य देखते हैं सारे भक्तों में वैराग्य महत्व रूप से देखा जाता है. तो ये वैराग्य जो होता है वो कभी कभी शुद्ध भक्ति में सहायता करता है आगे जाने के लिए. तो फिर ये कैसे हो सकता है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन ही हो जाता है फिर कि क्या वैराग्य संभव हो सकता है हृदय को कठोर बनाए बिना. तो यस ये हो सकता है. इसका उपाय रूपों स्वामी ने खुद बहुत सुंदर रूप से बताया है. दो प्रकार के वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य और दूसरा होता है फल्गु वैराग्य. युक्त वैराग्य का अर्थ होता है कि जो स्वाभाविक रूप से भक्ति के द्वारा प्रकट होता है ज्ञान और वैराग्य वो आपको अनासक्त बना देता है विषयों के प्रति. इसका श्लोक है अनासक्त से विषयान यथारहम उपयुंजत. जो कुछ उसको प्राप्त होता है समझ लो कि आपको जो कुछ प्राप्त हुआ निर्बंध कृष्ण संबंध है उसको भगवान की सेवा में जोड़ देना चाहिए क्योंकि वो भगवान से भगवान की शक्ति है. इसलिए उस वैराग्य को युक्त वैराग्य माना गया है अर्थात कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ प्रॉपर है ये युक्तम वैराग्य उच्यते दैट इज एक्सेप्टेड. फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद सेड कि हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं जैसे अभी लैपटॉप का यूज कर रहे हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी तो हम उसके अगेंस्ट में नहीं है. हमारा उद्देश्य है कि एवरीथिंग शुड बी यूटिलाइज फॉर कृष्ण सर्विस. हर एक वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए प्रयोजित किया जाना चाहिए. सो दैट इज युक्त वैराग्य. अभी कोई ये मान करके इसका त्याग कर देता है ये सब मिथ्या है सब मिथ्या है सब फेंको इसका कोई उद्देश्य नहीं है केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए. सो दैट इज ब्लाइंड वैराग्य इज नॉट प्रॉपर वैराग्य. प्रभुपाद वॉज वेरी क्लियर कि युक्त वैराग्य को फॉलो करना चाहिए. मायावादी लोग फल्गु वैराग्य फॉलो करते हैं इसलिए घिर जाते हैं. वैष्णव जो होते हैं वो युक्त वैराग्य फॉलो करते हैं इसलिए उनको वैराग्य भी होता है और फिर भी उनका हृदय सॉफ्ट रहता है. दैट्स अ बैलेंस प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट. हृदय को कठोर किए बिना ज्ञान और वैराग्य के द्वारा जो आगे बढ़ता है उसको युक्त वैराग्य बोला जाता है. That is mentioned in Rupa Goswami's treasure, Yukta Vairagya. That is very famous. आपने सुना ही होगा ये अनासक्त से विषयान ये था ना वो ये थे ये बोला कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्छते थे.
IMP श्लोक में है वो प्रभु जी वाला श्लोक.
ये KM भी होगा ये आपका.
हाँ
हाँ पूरी. Yeah. And second है श्लोक का प्रापंचिकतया बुद्धिया. प्रापंचिकतया बुद्धिया का अर्थ होता है कि हर एक वस्तु मिथ्या है ऐसा मानना वो ऐसी बुद्धि लगाना कि सब कुछ मिथ्या है क्योंकि भगवान ये भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है कुछ भी. तो उसमें फिर हरि संबंधी वस्तु ना ऐसी चीजों को कि जो भगवान की सेवा में लग सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत अच्छा कुछ बनाया लेट्स से अहू से या अमल सीता माता जी आपका कोई फेवरेट स्वीट डिश बताइए.
favorite dish?
Sweet dish. One of the favorite sweet dish.
Kheer.
Kheer. अगर समझ कि खीर को अगर कोई देखता है, ये खीर ऐसी वस्तु है जिसको भगवान को भोग लगाया जा सकता है, दैट इज हरि संबंधी वस्तु है, राइट? एनीथिंग, यू नो, वी कैन हैव अनदर, यू नो, एग्जांपल, अभय गौरांग प्रभु, कोई फेवरेट फ्रूट बताए, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है?
मैंगो.
मैंगो, अच्छा, ये मैंगो जो है दैट इज ऑल्सो हरी संबंधी वस्तु ना, राइट? दैट इज हरी संबंधी. और बलराम वल्लभ प्रभु, कोई फेवरेट फरसान बता सकते हैं? आई नो आपके पास तो बहुत लंबा लिस्ट होगा, बट कोई फरसान, फेवरेट फरसान? आई डोंट नो वेयर इज देयर. Okay, शायद नहीं है वहां पर. But I can see his name very much. Okay, अचिंत दस्तर जी प्रभु, आपका कोई बताइए.
समोसे प्रभु जी.
वाह, समोसा रूपत. Yes. So, like this, ये सारी वस्तुएं हरि संबंधी वस्तु है, इसको त्याग कर देना. नहीं, अगर आपको बोलो अचिंत्य प्रभु को बोला जाए आज से आपको समोसा का त्याग करना पड़ेगा, अभय गौरांग प्रभु को बोला जाए आज से आपको मैंगो का त्याग करना पड़ेगा, और ज्यादा वो आपको खीर का त्याग करना पड़ेगा. सो यू नो दैट इज नॉट वैराग्य. हरि संबंधी वस्तु का त्याग कर देना, मुमुक्षु भी परित्याग हो, ऐसा कोई त्याग करता है उसको समझे बिना वैराग्य किसको कहते हैं, इसको त्याग कर देता है, ऐसे वैराग्य को फल्गु वैराग्य बोलते हैं. वैराग्यम फल्गु कथ्यते, ऐसा वैराग्य फल्गु वैराग्य माना जाता है. सो दैट इज फल्गु वैराग्य, रिजेक्टिंग विच कैन बी एक्सेप्टेड इन कृष्ण सर्विस, भगवान की सेवा में जो उपयोग में आ सकता है ऐसी वस्तुओं को त्याग कर देना, दैट इज फल्गु वैराग्य. और इसके साथ साथ वेल्थ एंड फॉलोअर्स, अगर कोई अपने धन से या अनुयायियों से भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है तो वो भी साधन भक्ति के अंग में नहीं आता है. समझ लो कोई धनवान व्यक्ति है, उसने बहुत बड़ा अनुदान दिया है विशाल मंदिर का निर्माण करने के लिए, सही में वो अच्छा कार्य है और भक्ति में उसकी सुविधा, वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है इसके माध्यम से, लेकिन इसको डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट में इसका स्थान नहीं मिलता है. वो सब्सिडियरी वन शुड थिंक, शुड नॉट थिंक दैट दिस द सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हियर इन आर हिज डिवोशनल सर्विस. इफ ही बिकम्स कैरिड अवे बाय द मिसकंसेप्शन, ही विल बी मिसलेडन. सो उस जो दान देने वाला व्यक्ति है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि उस दान के द्वारा मंदिर में जो कुछ भी होगा, पूजा भोग लगाएगा या भगवान के विग्रह की पूजा करेगा, तो वो सब जो किया गया वहां पर जो किया गया वो भी उसकी खाते में जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इससे तो उसकी भक्ति कमजोर हो जाती है. इन द सेम वे गुरु शिष्य को तैयार करता है या फिर आप किसी को प्रचार करते हो, वो जो सेवा करता है, वो जो भक्ति करता है, उसका भी आप ले तो बोले ये मैं ही कर रहा हूँ, सब मेरा ही हो रहा है, दिस वे इट डजंट वर्क. जो भक्त करता है वो खुद उसके खाते में भगवान की सेवा जाती है, वो दैट इज नॉट अंग ऑफ डिवोशनल सर्विस. प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आध्यात्मिक गुरु पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है एंड ओनली ऑन हिज ओन इनिशिएटिव बिकम्स अ स्पिरिचुअल, खुद से गुरु बन गया है, ऐसा व्यक्ति धन और अनुयायियों को इकट्ठा करने में लग जाता है, और इसलिए वो उत्तम प्रकार की भक्ति को प्राप्त नहीं करता. और कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बह जाता है प्रभाव में, माया के प्रभाव में, और उसकी भक्ति कमजोर हो जाती है. सो अनुयायीगण और धन से की गई जो सेवा है वो डायरेक्ट चौसठ अंगों में नहीं आती है. और साथ साथ में जो संत प्रकृति संत सतो वृत्ति जो होती है या अच्छी क्वालिटीज सेंटली क्वालिटीज जैसे अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य बोलना हमेशा, तो ये सब साधन भक्ति के अंग में नहीं आते, क्योंकि जैसे कोई भक्त भक्ति करता है तो ये सब गुण अपने आप प्रकट होते हैं, भक्त को अलग से ये सब नहीं करना पड़ता। प्रभुपाद कहते हैं कि वेजिटेरियन इज नॉट नेसेसरी डिवोटी, कोई शाकाहारी हो सकता है लेकिन वो भक्त हो ऐसा जरूर नहीं होता है, लेकिन अगर कोई भक्त होता है चाहे वो वेजिटेरियन हो या अहिंसक हो कैसा भी हो, वो ऑटोमेटिकली वेजिटेरियन बन जाता है और अहिंसक बन जाता है, उसको भक्त बनना पड़ता है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। सो जैसे उस शिकारी की कथा रूप गोस्वामी बुक में बताते हैं, सो इन दिस वी कैन फर्दर अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ये संत वृत्ति जो होती है वो अपने आप आती है, नारद मुनि का संपर्क करने से अपने आप होता है, सो अलग से नहीं लगाना पड़ता। तो ये वैदिक साधन भक्ति के डिस्क्रिप्शन को संक्षिप्त में कंक्लूड करते हैं, इससे पहले रूप गोस्वामी कहते हैं कि केवल एक अंग या अनेक अंग ये दोनों ही इस भक्ति में चल सकता है, इक्वली एक अंग 64 में से किसी एक अंग को फॉलो करते हो या फिर आप अनेक अंगों को फॉलो कर सकते हो, वो सब आपको सेम परिणाम प्राप्त देता है, सेम उसका मिलता है लाभ। सो इसको कभी कभी मर्यादा मार्ग भी बोला जाता है विधि साधन भक्ति को, क्योंकि यह ऐश्वर्य मार्ग भी माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान के ऐश्वर्य भक्ति से पूजा होती है, और भाव भक्ति में जो होता है उस भाव भक्ति में क्या देखा जाता है, उसमें ऐश्वर्य कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो भक्ति के जो नवोदय भक्ति के जो नौ अंग है वो कोई भी एक अंग उसमें काम करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पारसम अर्चनम मननम दासन सख्यम आत्मनिंदनम, और इसमें से कोई भी एक अंग काम कर सकता है, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा। श्रवणम का आदर्श थे परीक्षित महाराज आप जानते हो, कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी, स्मरणम प्रहलाद महाराज, पाद सेवनम लक्ष्मी देवी, अर्चनम पृथु महाराज, वंदनम अक्रूर दास्यम हनुमान, सख्यम अर्जुन, आत्मनिर्दन बलि महाराज, और बहुत सारे अंग का जिसने उपयोग किया है अनेक अंग का, वो है अम्बरीश महाराज जिन्होंने सारे अंग को एक साथ उपयोग किया है। वही मन कृष्ण पदारविंद वचांसी वैकुंठ गुणान लाइक दिस। सो इस तरह से आप चाहे एक अंग का उपयोग कर सकते हो या फिर अनेक अंग का भी उपयोग कर सकते हो। सो दिस वे we execute sadhana bhakti. Now, next time we will discuss raga bhakti. That is ragatmika and raganuga bhakti. Further, we'll discuss. So, chapter 15 will continue next time. Any question with this?
Hare Krishna, Prabhuji, मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बोला कि इन 64 में से भी आप किसी एक का भी अगर कर सकते हैं तो आपको वही परिणाम मिलेगा, और अलग से पांच ये दे रखे हैं हमें भी महत्वपूर्ण अंग हैं, तो मतलब इसका ये है कि ये जो पांच हैं हालांकि ये हैं लेकिन उसके बाद भी यदि आप इनके अलावा भी यदि आप इन 64 में से कोई एक ले लेते हैं तो वो भी हमें इक्वल परिणाम देगा।
That is mentioned for नवोदय भक्ति के जो नौ अंग है उसको उसके साथ किसी और चीज को ले सकते हो, लाइक दैट। और एनीथिंग 64 में से
okay. मतलब नवोदय भक्ति का कोई एक अंग होना मैंडेटरी है?
यस, पर नवोदय भक्ति का एक अंग होना मैंडेटरी है। वेल, मुख्य रूप से देखा जाए तो जो पांच अंग 64 अंग में से बताए गए हैं, ये पांच अंग में से कोई एक अंग होना आवश्यक है। दिस आर द फाइव मोस्ट इम्पोर्टेंट लिम्स ऑफ डिवोशन सर्विस, बट ऑफकोर्स नवोदय भक्ति, शास्त्र से इस नाइन नवोदय भक्ति जो है उसका वर्णन वैदिक शास्त्र में श्रीमद भागवतम में आता है। तो नवोदय भक्ति का कोई भी एक अंग, और मैंने प्रभुपाद आल्सो मेंशन कि नौ में से कोई भी एक अंग या फिर मल्टीपल अंग शुड फॉलो. 64 अंग जो है दे आर हेल्पिंग दिस डिवोशनल सर्विस.
तो हम प्रभु जी ऐसा भी कह सकते हैं कि इन नौ में से एक अंग या इन पांच में से एक, क्योंकि एक्चुअली तो इंटरकनेक्टेड ही है. जैसे अगर मैं कहूँ क्या प्रभु जी,
नौ अंग में से कोई भी एक कर सकते हैं.
ओके, और या हम ये कह सकते हैं कि इन पांच में से एक कोई ले सकता है.
हाँ, यस सेम, बिकॉज़ इट इज कनेक्टेड इंटरनली.
यस, थैंक यू प्रभु.
हरे कृष्णा, जैसे ये पांच अंग जो हमने चर्चा किया उसमें जैसे किसी भक्त मतलब हम जब प्रचार करते हैं किसी नए भक्त को जब जोड़ने का प्रयास करते हैं तो मतलब पांचों अंगों को हम मतलब किस तरह से हम उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे वी कैन प्रेजेंट इट जिससे वो सबसे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इज इट लाइक चैंटिंग इज मोर प्लीजेंट और मतलब वो तुरंत उससे जुड़ सकता है, या फिर भक्तों की सेवा इज बेटर वे टू एंगेज देम सो दैट इनिशियली वो एक को फॉलो कर या धीरे धीरे फिर आगे बढ़े. मतलब अगर इफ यू आर प्रेजेंटिंग दिस टू देम
एनी ऑफ द नाइन, नौ में से कोई भी एक
पांच पांच जो है उसकी बात में है.
हाँ, पांच बिकॉज दे आर ऑल, देखो इन कंक्लूजन 64 अंग जो है शुद्ध भक्ति के आचरण के वो ये नवदा भक्ति के एक्सपांसन है. 64 जो लिम्स ऑफ डिवोशन सर्विस है वो नाइन बेसिक डिवोशन प्रैक्टिसेस के एक्सपांसन है, और इसलिए नौ में से कोई भी एक कर फॉलो करता है या फिर वो पांच में से कोई एक फॉलो करता है बिकॉज एनीवे इट्स एक्सपांसन ओनली ऑफ द नाइन मेन डिवोशनल सर्विस still is getting to get success.
Right. I mean, my question was more like जैसे practically देखा जाए तो हम बोलते हैं कि आप माला करना शुरू करिए एक माला, so that is engaging them in chanting, which is one of the limbs. फिर या फिर हम बोलते हैं कि आप गीता पढ़ना पढ़िए, so that is another limb altogether. फिर हम बोलते हैं कि सेवा करने के लिए तो जैसे कुछ भोग बना के मतलब लाया कुछ भी है etcetera. So, मतलब what is more जो मतलब जल्दी वो लोग करते हैं reciprocate करते हैं वो जल्दी से जुड़ सकते हैं तो मतलब जिस so like yeah. that.
Yes, but Prabhupada mentioned, Prabhupada emphasized कि कोई भी एक सेवा में कोई भी जुड़ सकता है, that is कोई इससे कोई problem नहीं, लेकिन जो minimum requirement है, जो minimum requirement वो पांच अंग जो यहाँ बताया ना, that is minimum requirement, that is नाम संकीर्तन is must. अगर हरि नाम उच्चारण नहीं करता है व्यक्ति तो उसका वो भजन क्रिया में नहीं आता है, फिर वो सेवा वगैरह जो करता है उसका कंक्लूजन यही आता है कि स्टार्ट चैंटिंग. अगर वो कोई भी विधि को फॉलो करता है बट द आइडिया इज दैट ही थिंक ऑफ कृष्णा, और खास करके कलयुग में द प्रोसेस इज होली नेम, तो ये कोई भी प्रोसेस फॉलो करता है तो उसको युग धर्म को फॉलो ऑटोमेटिकली वो करेगा. अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक केवल प्रसाद ही परोसता रहता है और एक माला भी जप नहीं करता है, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट बीइंग इन अ राइट एटीट्यूड, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर सपोज टू एक्सेप्ट द युग धर्म. युग धर्म इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम इन दिस पर्टिकुलर.
तो प्रभु जस्ट लास्ट पॉइंट, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा था जैसे कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो माला करते हैं मगर सम मतलब उनके शेड्यूल में ऐसा होता है कि वो लोग शास्त्रों का अध्ययन इतना रेगुलर नहीं कर पाते या करते ही नहीं है, तो इन दैट केस मतलब हमारा मतलब कैसे होना चाहिए एटीट्यूड, मतलब कैसे हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
गुड चैंटिंग विल आस्क हिम टू रीड बुक्स, उसको हमें बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही पढ़ेगा. अगर वो कहता है कि करता हूं और मुझे स्टडी के लिए टाइम नहीं है तो वो हमें कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, वो खुद ही उसकी इच्छा होगी भगवान की महिमा सुनने के लिए, प्रोवाइडेड इफ इज चैंटिंग गुड. अगर वो चैंटिंग को अपना मेन सर्विस बता रहा है देन यस इज चैंटिंग विल आस्क हिम टू रीड द बुक्स, बट ऑफ कोर्स प्रभुपाद हैज वेरी प्रैक्टिकली गिवन द गाइडेंस. प्रभुपाद ने बहुत व्यवहारिक रूप से ये बात बताई है कि केवल आपकी माला से कुछ नहीं होगा क्योंकि आप हरिदास ठाकुर तो है नहीं, इसलिए हमें वैष्णव की संगति, सेवा और भागवतम का अध्ययन या ये शास्त्र का अध्ययन, प्रभुपाद रात जग जग करके इतने सारे ग्रंथों का अनुवाद क्यों किया? अदरवाइज वो ऐसा कह सकते थे कि लेट देम चैंट फर्स्ट, फिर अपने आप से वो लोग पूछेंगे कि मुझे क्या पढ़ना है, तब हमारी पुस्तकें देना। प्रभुपाद नेवर डिड दिस। प्रभुपाद सेड दैट अगर वो चैंटिंग उसको नहीं करना है, उसको किताब पकड़ा दो, वो कम से कम थोड़ा पड़ेगा, स्टिल इट इज वर्ड। सो द आइडिया इज दैट ऑल दिस फाइव थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, वी कैन नॉट जस्ट पिक एंड चूज। मुझे धाम में रहना अच्छा लगता है, चैंटिंग अच्छा नहीं लगता, मैं वृंदावन में रहूंगा लेकिन माला एक भी नहीं करूंगा, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? तो ऑल दिस फाइव आर इम्पोर्टेंट, वी कैन नॉट जस्ट पिक एंड चूज।
हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो नवदा भक्ति के जो अपने एग्जाम्पल सबके श्रवणम कीर्तन के जिसके भी एग्जाम्पल देखे, नहीं जस्ट रिपीट जो नाम
परीक्षित महाराज कीर्तन सुखदेव गोस्वामी कीर्तनम फिर वंदनम स्मरणम स्मरणम इज प्रहलाद महाराज पाद सेवनम लक्ष्मी देवी अर्चनम पृथु महाराज वंदनम अक्रूर दास्यम हनुमान सख्यम अर्जुन आत्मनिवेदनम बलि महाराज और ये सबका मिक्स मैन जो अनेक अंग वो है अम्बरीश महाराज। Okay, so we stop here. We will see you again with Raghavendra Bhakti on next day. I mean, next day. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.